ये रेडियो नेपाल है। अब मीनू प्रधान से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। व्यवस्था को उलटाने की कोशिश करने वालों का जन स्तर पर प्रतिरोध होना जरूरी है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड का कथन। जनकपुर में कल आयोजित होने जा रहे सीताराम विवाह महोत्सव की सभी तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। मस्तिष्क के इलाज के साथ ही इसके अध्ययन अनुसंधान के लिए वीर अस्पताल में राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर केंद्र की हुई स्थापना। और कुवैत के अमीर शेख नवाफ का 86 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि बहुसंस्कृति युक्त लोकतांत्रिक समाज निर्माण से ही राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। आज ललितपुर के थेचो में आयोजित नवदुर्गा भवानी देवी की 12 वर्षीय यात्रा के समापन समारोह में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि अपनी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना सबका दायित्व है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने आगे कहा कि मौजूदा व्यवस्था को उलटाने की कोशिश करने वाले तत्वों के विरुद्ध जन स्तर पर ही प्रतिरोध किया जाना जरूरी है। आज ही मानव सेवा आश्रम के हिटौड़ा वार्ड नंबर 9 लाम सूर्यथाप में निर्मित भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि आश्रम द्वारा किए जा रहे सेवा के कामों ने सरकार को झकझोरा है। बता दें कि मानव सेवा आश्रम खुले आकाश के नीचे सड़क जीवन जीने को मजबूर, बेघर, बेसहारा, मनोरोगी, अनाथ, अपांग, अशक्त, असहाय और सहयोगापेक्षी लोगों के उद्धार, उपचार, पालन पोषण, संरक्षण एवं पारिवारिक पुनर्मिलन, साथ ही पारिवारिक पुनर्मिलन संभव न होने वाले लोगों के मानव उचित व्यवस्थापन जैसे काम करता है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने आगे कहा कि सभी 7 प्रदेशों में मानव सेवा आश्रम के भवन निर्माण, सड़क मानवों के उद्धार के लिए वाहन की व्यवस्था और 10,000 असहायों को आर्थिक सहयोग देने के लिए सरकार तैयार है। मौके पर बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री शालिक राम जमकट्टिल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने आश्रम व्यवस्थापन के लिए बजट आवंटित किया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल के साथ उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने भेंट की है। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में हुई भेंट में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच देश के समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। ये जानकारी राष्ट्रपति पौड़ेल के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने दी। निकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने कहा कि गणतंत्र का विकल्प राजतंत्र नहीं हो सकता। आज नेकपा एस दोलखा के 10वें जिला अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष नेपाल ने कहा कि गणतंत्र में कमी कमजोरियां हो सकती हैं, पर उन कमियों पर विचार करके उन्हें सुधारा जा सकता है, लेकिन गणतंत्र के विकल्प के रूप में राजतंत्र के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता। भौतिक पूराधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला ने कहा कि निर्धारित समय में अपना लक्ष्य पूरा करने वाले निर्माण व्यवसाय कंपनियों को सम्मानित किया जाएगा। आज कपिलवस्तु के सुरही नदी में निर्मित पुल का उद्घाटन करते हुए मंत्री ज्वाला ने कहा कि समय में ही अपना काम संपन्न करने वाली निर्माण कंपनियों को हरेक वर्ष सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे लुम्बिनी प्रदेश के भालुवांग से चंद्रोटा तक के सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए व्यवसायियों को कहेंगे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमआलए के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश के विकास के लिए एमआलए पार्टी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आज बैतड़ी के झूलाघाट से पांच थर के चीवा भंजांग तक हो रहे समृद्धि के लिए संकल्प अभियान के क्रम में पांच थर के फिदम में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली ने कहा कि बैतड़ी की झूलाघाट से पांच थर के चीवा भंजांग तक की यात्रा का मुख्य उद्देश्य केवल विकास नहीं बल्कि जन विश्वास को बढ़ाना भी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबै को यो विश्वास होनी नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को नई चुनौतियों का सामना करने वाले नेतृत्व की जरूरत है। आज कांग्रेस की गलकोट नगर समिति द्वारा बागलुंग में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दो वर्षों के बाद होने वाले महाधिवेशन में नए नेतृत्व का चयन किया जाएगा। महामंत्री शर्मा ने कहा कि देश को अब केवल विकास नहीं बल्कि स्तरीय विकास की जरूरत है। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ने वीर अस्पताल में मस्तिष्क के इलाज संबंधी अध्ययन और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर केंद्र की स्थापना की है। ये जानकारी प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉ भूपेंद्र खड़का ने दी। उन्होंने बताया कि नेपाल में पहली बार मस्तिष्क संबंधी रोग के इलाज के लिए अध्ययन और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि मार्चिस 24 गति से ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए विशेष क्लिनिक सेवा की शुरूआत की गई। ये जानकारी अस्पताल के निमित्त निर्देशक डॉ श्रवण कुमार थापा ने दी। बता दें कि इससे पहले नेपाल में मस्तिष्क का इलाज होता था लेकिन इससे संबंधित अध्ययन अनुसंधान के लिए कोई निकाय नहीं थी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि नेपाल के संस्कारों संस्कृतियों और परंपराओं को बचाना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। आज काठमांडू में आयोजित मध्य पश्चिमांचल साहित्य परिषद की 7वीं साधारण सभा में मंत्री शर्मा ने कहा कि युवाओं की सक्रियता से ही देश में राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन संभव हो सकता है। इसलिए समाज की विकृतियों का अंत करने के लिए संस्कृति को संजोना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। जनकपुर धाम में कल मनाई जाने वाली श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव अंतर्गत आज मटकोर विधि संपन्न हुई। जानकी मंदिर से नेपाली सेना के बैंड के साथ माता सीता के मानव स्वरूप को रथ में रखकर जनकपुर धाम के धार्मिक महत्व वाले गंगा सागर में मटकोर की रस्म निभाई गई। मटकोर विधि के बाद गंगा सागर में महागंगा आरती की गई। सप्ताहव्यापी चलने वाले श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव अंतर्गत कल दोपहर स्वयंवर तथा शाम को शुभ विवाह का कार्यक्रम है। बता दें कि मार्च 26 गति से ही नगर दर्शन के साथ ही श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव की शुरुआत हुई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबे अल सबा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। सरकारी टेलीविजन ने आज इसकी जानकारी दी। उन्हें हफ्ते भर पहले सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुवैत के राज्य टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान में कहा गया है कि बड़े दुख के साथ हम कुवैत राज्य के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि शेख ने सितम्बर 2020 में सत्ता संभाली थी। 3 साल तक सत्ता में रहने के बाद उनका निधन हो गया। शेख के निधन पर कुवैत ने 40 दिनों के शोक की घोषणा की है और सरकारी कार्यालय 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। माना जाता है कि शेख नवाफ 83 साल की उम्र में क्राउन प्रिंस बनने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज शख्स थे। यही वजह है कि सन 2020 में उन्हें शाही परिवार के कुछ लोग अमीर बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। इसराइल और हमास के बीच युद्ध में लगातार हमले जारी हैं। आज इसराइल के हवाई हमलों में गजा में दर्जनों लोगों की जान गई। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक ओल्ड गजा स्ट्रीट के जबालिया स्थित 2 घरों पर हमले हुए हैं। इसमें करीब 14 लोगों की जान गई है। ये तब हुआ है जब अमेरिका ने इसराइल से हमलों में कमी लाने और केवल हमास लीडर्स को निशाना बनाने के लिए कहा है। फलस्तीनी एजेंसियों के मुताबिक इन हमलों के बाद बड़ी संख्या में लोग मलबे के अंदर दबे हैं। इसराइली सेना ने कहा कि उनकी सेना ने गजा सिटी में 2 स्कूलों में छिपे आतंकवादियों को मार गिराया। इसके अलावा खान यूनिस में हथियारों से भरे अपार्टमेंट में छापा मारा गया है। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अमेरिका ने इसराइल को चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि अंधाधुंध हवाई हमलों में फलस्तीनी नागरिकों के मारे जाने के चलते इसराइल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने गुरुवार और शुक्रवार को इसराइल का दौरा किया। उन्होंने इसराइल को व्यापक सैन्य अभियान को कम करने और हमास नेताओं को टारगेट करके हमले करने की बात कही है। इससे पहले आज इसराइल रक्षा बलों ने कहा कि गजा पट्टी के शेजैया जिले में 3 बंधकों को खतरा समझकर मार गिराया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को असहनीय त्रासदी करार दिया है। बंधकों की गलती से हत्या के बाद तेल अवीव के कल्पलान जंक्शन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर के मुताबिक भीड़ ने नारे लगाते हुए कहा कि जब तक हर आखिरी बंधक को रिहा नहीं किया जाता तब तक कोई जीत नहीं होगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। व्यवस्था को उलटाने की कोशिश करने वालों का जन स्तर पर प्रतिरोध होना जरूरी है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड का कथन। जनकपुर में कल आयोजित होने जा रहे सीताराम विवाह महोत्सव की सभी तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। मस्तिष्क के इलाज के साथ ही इसके अध्ययन अनुसंधान के लिए वीर अस्पताल में राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर केंद्र की हुई स्थापना और कुवैत के अमीर शेख नवाफ का 86 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभ रात्रि।